हवेली, वही रात। ऊपर वाले हिस्सों में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर रात की हवा फिसलती जा रही थी और पूरे घर में एक गहरी, शांत पर थोड़ी बेचैन खामोशी पसरी हुई थी। रम्या का कमरा, पहली मंजिल। कमरा छोटा था पर साफ सुथरा। दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर और एक कोने में किताबों का ढेर। रम्या पढ़ाई कर रही थी, घुटनों पर किताब, बालों को पेंसिल से ऊपर बांधा हुआ, पर चेहरा शांत नहीं था। बार बार वो सांस छोड़ रही थी जैसे किसी उलझन में हो। उसी समय दरवाज़ा आधा खुला, शकुंतला अंदर आई। रम्या, उसने रुखाई से कहा, फोटो वाले दिन को ध्यान रखना, सभी अच्छे कपड़े निकाल लेना। रम्या ने किताब बंद की, बौहें हल्की सी सिकुड़ी। माँ, एक बात पूछूं? शकुंतला ने चिड़चिड़ेपन से कहा। पूछो जल्दी, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। फैमिली फ़ोटो खिंचवानी है तो हम लोग क्यों? हम तो इस परिवार का हिस्सा नहीं है ना? रम्या की आवाज़ बिल्कुल सीधी, बिना किसी तड़के की। शकुंतला का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब हिस्सा नहीं है? हम भी इसी घर का हिस्सा है, समझी? लेकिन, रम्या की आवाज़ हल्की सी टूट गई, हमारा घर तो वहाँ है, पापा के पास, यहाँ क्यों शामिल होना है हमें हर चीज़ में? शकुंतला की आंखों में एक पल के लिए कुछ चुभने जैसा चमका, फिर उसने आवाज़ ऊंची की, बेकार की बातें मत करो, अब यही हमारा घर है। और वो घर, उसने होंठ फिंचे, वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होती थी, तुम्हें नहीं पता, मैं वापस नहीं जाऊंगी, तुम भी मत सोचना। रम्या चुप रह गई। शकुंतला कमरे से निकल गई, गुस्से और कड़वाहट की हवा छोड़ते हुए। दरवाज़ा बंद होने के बाद रम्या ने धीरे से पेंसिल उतारी और गहरी सांस ली। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मन जैसे किसी बोझ से दब गया हो। ठीक उसी समय बाहर गलियारे में से धीमे कदमों की आवाज़ आई। श्यामली वहां से गुजर रही थी। रम्या का चेहरा देखते ही श्यामली रुक गई। उसकी आंखें तेज थीं, भाव पढ़ने में कभी गलती नहीं करती थीं। क्या हुआ? उसने नरम स्वर में पूछा। रम्या ने पहले कुछ नहीं कहने की सोची, पर श्यामली का स्वभाव ऐसा था कि दिल में छिपी बात खुद बखुद बाहर आ जाती थी। मामी, रम्या ने कहा, माँ को न जाने क्या हो जाता है, हम यहाँ मेहमान हैं, फिर भी वो हर चीज़ में हमारे होने का दिखावा करवाती हैं। हम इस हवेली के लोग नहीं हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। वो बच्ची थी, दिल की साफ। श्यामली ने कमरे में कदम रखा और उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। रम्या, ये सब बड़े लोगों की दुनिया है, उनके अपने दर्द होते हैं, अपनी कमजोरियाँ, अपने फैसले, जो हमेशा समझ में भी नहीं आते। रम्या ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये झगड़े, ये दिखावे पसंद नहीं। श्यामली ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो फिर तुम सिर्फ वही करना जो तुम्हें पसंद है, बाकी की बातें उनके लिए मैं हूँ, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रम्या ने धीरे से सिर हिलाया। आपको लगता है मैं गलत नहीं हूँ? श्यामली मुस्कुराई। तुम कभी गलत नहीं होती जब तुम दिल साफ रखती हो। रम्या की आंखें नम से चमकी। मामी, आप इस हवेली में सबसे अलग हैं, सबसे ज्यादा। वो शब्द खोज नहीं पा रही थी। श्यामली ने खुद ही पूरा किया। सबसे ज्यादा समझने वाली? रम्या हल्की हंसी में सिर हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल। कुछ पल दोनों ने चुपचाप बैठकर कमरे की खामोशी को महसूस किया। हवेली की दीवारें बाहर से बड़ी लगती थीं, पर अंदर हर किसी का अपना अपना कोना बहुत अकेला होता था। उसी समय गलियारे में फिर से हल्की आवाज हुई, जैसे कोई धीमे कदमों से उनके पास आया हो। कदम थमे और श्यामली ने बिना मुड़े पूछ लिया, कौन है? मैं। दरवाजे के बाहर से आर्यन की आवाज आई, धीमी पर गहरी। रम्या तुरंत उठी, भैया अंदर आओ ना। आर्यन अंदर आया, चेहरा शांत पर आंखों में हमेशा की तरह सतर्क चमक। उसने रम्या को देखा, तुम ठीक हो? रम्या ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में उदासी छिपी नहीं थी। आर्यन बैठा नहीं, बस कमरे में खड़ा होकर बोला, रम्या तुम जो सोच रही हो ना, वो गलत नहीं है। तुम्हारी दुनिया अभी पढ़ाई की होनी चाहिए, बड़ों की नहीं। रम्या ने ढेर सारा भरोसा भरकर कहा, आप भी यही कहते हो? आर्यन की नज़र धीरे से श्यामली पर गई और वहीं ठहर गई, क्योंकि सच है, उसने धीमे स्वर में कहा, जो सिर्फ श्यामली ने सुना, बड़ों की दुनिया अक्सर बेकार होती है। श्यामली का दिल एक पल को धड़क कर रह गया, वो नज़रों को हटा नहीं पाई। रम्या ने माहौल को हल्का किया, भैया आप लोग भी ना ऐसे बातें करते हो जैसे किसी सीक्रेट मीटिंग में बैठे हो। श्यामली ने मुस्कुरा कर कहा, सीक्रेट तो कुछ नहीं, बस। आर्यन ने बीच में ही कहा, कुछ बातें सिर्फ सही लोगों से ही कही जाती हैं। उसके शब्दों में न जाने कितनी परतें थीं। रम्या ने बात समझी नहीं, पर श्यामली ने हर परत सुनी। उसके गाल हल्के से गर्म हो गए। कुछ देर बाद रम्या फिर पढ़ाई में लग गई। श्यामली उठने लगी, मैं चलती हूँ, माँ ने बुलाया था। आर्यन भी उसके साथ दरवाजे तक आया। रम्या ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ समझ तो नहीं पा रही पर महसूस जरूर कर रही हो। गलियारा, वही रात, दोनों साथ साथ चले कुछ दूरी पर दूरी भी अजीब थी, जैसे दोनों के बीच एक खिंचती हुई डोर हो। आधी मंजिल तक पहुंचकर आर्यन रुक गया। श्यामली ने मुड़कर देखा। क्या हुआ? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। दादी ने क्यों बुलाया है? श्यामली ने सीधी नजर नहीं मिलाई। पता नहीं, शायद फोटो के बारे में कुछ होगा। शायद, आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पर उसमें चिंता साफ थी। फिर उसने श्यामली को देखकर कहा, अगर किसी भी बात में तुम्हें परेशानी हो तो मुझे बताना, चाहे छोटी हो या बहुत बड़ी। श्यामली उसे कुछ क्षण देखती रही। उसकी आंखों में सचमुच एक भरोसा था, नकली नहीं, न दया बल्कि सहारा। श्यामली ने बस धीमे से सिर हिलाया। आर्यन ने उसी जगह रुककर उसके जाते हुए कदमों को देखा, जैसे उसके मन की आधी बेचैनी अब उसके चेहरे पर उतर आई हो। बरामदे से फिर हवा गुजरी, ठंडी, गहरी, और एक नई कहानी लेकर, जो अब शुरू होने ही वाली थी।